पैराग्राफ चेंज। यह विचारणी है कि सुरसरावली सुरसागर की सूची क्यों नहीं हो सकती। सुरसागर के पदों की रचना उनके जीवन के अंतिम समय तक होती रही। सूरदास जी का गोलोकवास विक्रम संवत की 17वीं सदी के चतुर्थ शतक में माना गया है, पृष्ठ संख्या 28। जबकि सूरदास का जन्म विक्रमा शब्द 1535 में माना जाता है। इस प्रकार उन्हें कम से कम 95 वर्ष की आयु तो मिली ही थी। सुरसागर की सूची की रचना उनकी पूर्णता के पश्चात ही संभव थी, किंतु सुरसरावली की रचना तो सूरदास ने 67 वर्ष के वय में ही कर दी थी। फिर वह सुरसागर की सूची कैसे हो सकती है? 1,00,000 पदबंध का क्या अर्थ है, यह भी विचारणीय है। अनेक विद्वान सुर के 1,00,000 पदों के रचयिता होने का विश्वास नहीं करते। अतएव विबंध का अर्थ यानी पद की पंक्ति करके 1,00,000 पद बंध का अर्थ करते हैं पदों की 1,00,000 पंक्तियां। यही मान्यता रखने वाले डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने अपने ग्रंथ में लिखा है, 1,00,000 पंक्तियां 10,000 पदों से भी कम में आ सकते हैं। और 67 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने अवश्य इतने पदों की रचना कर ली होगी, अथवा कवि की भावी पद निर्माण योजना का भी यह सूचक हो सकती है। डॉक्टर शर्मा का यह अनुमान कोरा अनुमान ही लगता है और वास्तविकता से बहुत दूर है। सुर का दीक्षा काल संवत 1567 विक्रमी तथा गुलोकवास संवत 1640 विक्रमी के लगभग माना जाता है। इस प्रकार उनका कविता 73 वर्ष का ठहरता है। संवत 1602 में जब सुर सारावली की रचना पूर्ण हुई, तब उनका कविता काल 35 वर्ष लगभग आधा समय बीत चुका था। यदि वार्ता के अनुसार सूरदास द्वारा लक्षावधि पद की रचना ठीक मानी जाए, तो पूर्ण काल में केवल 10,000 पदों की रचना, वार्धक्य में 90,000 पदों की रचना बेतुकी जान पड़ती है। यदि सरावली को भावी पद निर्माण योजना का सूचक मान लिया जाए, तो फिर सुरसागर की कोई न कोई प्रति उसी योजना के अनुसार लिखी हुई मिलनी चाहिए। अब तक ऐसी कोई प्रति नहीं मिली। लगता है अपने इस अनुमान का निरर्थक समझकर ही डॉक्टर शर्मा ने अपने ग्रंथ के दूसरे संस्करण से यह अंश निकाल दिया है। लक्ष्य का अर्थ यहाँ संख्यावाचक लाख से नहीं है और न बंद का अर्थ पंक्ति। श्री प्रभु दयाल मित्तल ने लक्ष्य का अर्थ उद्देश्य और बंध का अर्थ बद्ध किया है। अतः श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो, तादिनते हरि लीला गाई, 1,00,000 पद बंध का भावार्थ अधोलिखित रूप में करते हैं। अपने श्री वल्लभाचार्य गुरु जी से तत्व और लीला भेद का रहस्य जान करके उन्होंने इसी 1,00,000 से पद बंध हरि लीला का गायन किया। सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार वे 1,00,000 का दूसरा अर्थ करते हैं भगवान श्री कृष्ण। इस प्रसंग में वे अधोलिखित अर्थ कहते हैं। श्री वल्लभ गुरु ने सूरदास को भगवान श्री कृष्ण को उन लीलाओं का तत्व सुनाकर उनका भेद बतलाया था। उसी दिन से उन्होंने 1,00,000 भगवान श्री कृष्ण के पदों की वंदना करके जो लीलाएं गान आरंभ किया, उसका सार उन्होंने सरावली में आनंद पूर्वक गाया है। यहाँ उन्होंने पद का अर्थ चरण और बंद का अर्थ वंदना करके किया है। पृष्ठ संख्या 29। नाम छाप के विषय में विचार करते हुए डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा ने लिखा है कि सुर सरावली में कवि ने केवल 1 बार सूरदास, 4 बार सुर और 6 बार सूरज तथा संदिग्ध सूरजू का प्रयोग किया है। इस प्रकार सूरज के प्रयोगाधिक्य के आधार पर वे इसे सुर की रचना नहीं मानते। सुरसागर में सुर, सूरज तथा सुर श्याम छाप आए हैं। सुर तो निश्चित रूप से सूरदास का संक्षेपण है। अतः इस संदर्भ में डॉक्टर जनार्दन मिश्र सूरदास, सूरजदास तथा सुर श्याम को भिन्न भिन्न कवि मानते हैं। पैराग्राफ चेंज। सुरसरावली में छापों की जांच पड़ताल करके मित्तल जी ने अधोलिखित निष्कर्ष निकाला है। हमको इसकी जांच करने पर मालूम हुआ है कि डॉक्टर वर्मा की गणना ठीक नहीं हुई है। उनके लिखे अनुसार सूरजदास छाप का 1 बार आना तो ठीक है, किंतु सूरज नाम 6 के बजाय केवल 3 बार और सुर 4 के बजाय 11 बार आया है। उन्होंने वे 11 स्थल भी उद्धृत किए हैं जहाँ सुर छाप का प्रयोग हुआ है। पैराग्राफ चेंज। मेतल जी के अनुसार कि कवि छापों का अनुपात भी सुर सागर के विरुद्ध नहीं है, बल्कि इससे सरावली की प्रामाणिकता ही सिद्ध होती है। पुस्तक में सुर छाप वाले नामों की विशद परिचर्चा इसलिए स्वतंत्र अध्ययन के रूप में आगे छठे अध्याय में की गई है। डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा का मानना है कि सुरसागर की तुलना में सुरसरावली की भाषा तत्सम प्रधान है, उसमें ब्रजभाषा की स्वाभाविकता और माधुर्य का अभाव है, अतः इसकी भाषा शैली इसके सूरदास की रचना होने में संदेह की पुष्टि करती है। परंतु वास्तविकता यह है कि डॉक्टर वर्मा का निष्कर्ष वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई की उस प्रति पर आधारित है जिसकी भाषा का संशोधनों ने जानबूझकर संस्कृतिकरण कर दिया है। दूसरी बात यह भी है कि आवश्यक नहीं है कि किसी कवि की समस्त रचनाएं भाव भाषा और शैली में समान हो एवं उसमें सर्वत्र समरूपता दृष्टिगत हो। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास और हरिओंद की रचनाएं प्रमाण है। डॉक्टर दीन दयालु गुप्त के शब्दों में यह कहा जा सकता है, सरावली में भाषा की वही ब्रज रूप और वही लालित्य है जो सुरसागर में है। पैराग्राफ चेंज। डॉक्टर मित्तल के अनुसार सुरसागर तथा सुरसरावली दोनों के कथा प्रसंग मानविक स्थल रस संचार और काव्यगत दृष्टि में भी पर्याप्त समानता है। सरावली की सांप्रदायिक मान्यता भी सुरसागर के अनुकूल है। सरावली होली के बृहद गान के रूप में कथित रचना है। होली गान का वही रूप सुरसागर और कीर्तन के अनेक पदों में भी विद्यमान है। दोनों में एक मास तक चलने वाले होली उत्सव फगुआ होली खेल के आवश्यक साधन और गान वाद्य की सामग्री में भी समानता है। इन सब बातों से ये रचनाएं एक ही कवि की सिद्ध होती है। डॉक्टर मित्तल ने वैदुष्यतापूर्वक ढंग से दोनों कृतियों की समानताएं प्रकट की हैं। उन्होंने सुर सरावली तथा सुर सागर की मिलती जुलती पंक्तियों की लंबी सूची भी दी है। पृष्ठ संख्या 30, जिससे यह विश्वास दृढ़ होता है कि इन दोनों के रचयिता एक ही हैं। इस आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सुर सरावली अष्ट छापी महाकवि सूरदास की प्रमाणित रचना है। सुर सागर का प्रतिपाद्य। सब जीव संसार से विरक्त होकर भगवान में आसक्त हो जाता है, तब वह मुक्त जीव बन जाता है। भगवत भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं जिसे नवधा भक्ति कहते हैं, जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णुव स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्या आत्मनिवेदनम। भक्ति परक ग्रंथों की रचना पठन और श्रवण के उद्देश्य से की जाती है, अतः तब वे भक्ति के साधन बनते हैं। सूरदास ने सुर सरावली में भी वैष्णव भक्ति का उपाख्यान करते हुए दशधा भक्ति का वर्णन किया है, जिस पर नारद भक्ति सूत्र का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। श्रवण कीर्तन स्मरण पादरतम पादरत अर्चनम वंदनन रास शंख और आत्मनिवेदन प्रेम लक्षणा जास। सरावली की रचना का एक महान उद्देश्य यह भी है कि सूरदास ने सुरसागर में हरि लीला का व्यावहारिक तथा सरावली में सैद्धांतिक गान किया है। हरि लीला का अर्थ है प्रभु की किरणा। सृष्टि की रचना ही प्रभु की किरणा है, जिसकी होली की किरणा के रूप में वर्णन किया गया है। यह होली की क्रीड़ा पुरुष प्रकृति की क्रीड़ा अथवा राधा कृष्ण की क्रीड़ा मिलती है। इसमें सभी अवतारों की लीला तथा चराचर सृष्टि की रचना का वर्णन है। सूरदास इसी को सरावली के आरंभ में कहते हैं, खेलत यह विधि हरि होरी हो वेद विदित यह बात। प्रभु की विला शिक्षा का ही दूसरा नाम लीला है। लीला का कोई प्रयोजन नहीं है, लीला का प्रयोजन लीला ही है, वह अपने आप में साध्य है। वल्लभाचार्य जी की उक्ति है, न ही लीलायाम किंचित प्रयोजन भक्ति लीलया एव प्रयोजनत्वात्। प्रभु आनंदमय है, अतः उसकी लीला भी आनंदमय है। सृष्टि इसी लीला अथवा विलास शिक्षा का ही परिणाम है। उपनिषद वाक्य है, स एकाकी न रमते। ब्रह्म अकेला था, वह अकेले रमण नहीं कर सकता था, अतः उसने सोचा, एको अहम बहु श्यामः, मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊं। प्रश्नोपनिषद में उल्लेख है, तस्मे स होवाच प्रजा कामो वे प्रजापतिः, स तपो अस्यतः स तपस्तत्वा स मिथुनम उत्पाद्यते। रयम च प्राणम चितत्यो मैं बहुधा प्रजा करिष्यतः इति, अर्थात प्रजापति की इच्छा सृष्टि करने की हुई, उसने तपस्या की, तप करके उसने एक रई तथा दूसरा प्राण युग्म की उत्पत्ति की। यह रमणेच्छा की सृष्टि का कारण हुई कि ये दोनों मेरी नाना प्रकार की प्रजाओं का उत्पन्न करेंगे। पृष्ठ संख्या 31। यह रमणेच्छा ही सृष्टि का कारण हुई कि ये दोनों मेरी नाना प्रकार की प्रजाओं को उत्पन्न करेंगे। पैराग्राफ चेंज। प्रभु की लीला नित्य है और श्रवण पूर्णिमा की चंद्रिका में शांतवत रूप से चलती रहती है। उसमें प्रकृति और पुरुष स्वरूप राधा कृष्ण अपने अंगीभूत गोपियों के साथ नित्य विहार करते रहते हैं। उनके निज लोक का नाम है वृंदावन, जो नित्य है। इस लोक का वृंदावन उसी का प्रतीक है। सुरसरावली में यही सिद्धांत अधोलिखित रूप में वर्णित है। अविगत आदि अनंत अनुपम अलख पुरुष अविनाशी, पुरन ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम, नित निज लोक विलासी, जह वृंदावन आदि अजर जह कुंज लता विस्तार, तह विहरत प्रिय प्रियतम दो निगम भृग गुंजार, रतन जटल कालिंदी को तट तट पुनीत जह नीर, सरस हंस चकोर मोर खर कुजित कोकिल कीर, जहाँ गोवर्धन पर्वत मणिमय सघन कंदरा सार, गोपिन मंडल मध्य विराजत निसी दिन करत विहार। सृष्टि रचना क्रम के क्रम में असुर भी उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें अधर्म की वृद्धि होती है और सज्जनों को कष्ट होता है। अतः असुरों के विनाश के लिए भगवान को अवतार धारण करना पड़ता है। सरावली में इसी लीला क्रम में भगवान के विविध अवतारों का वर्णन किया गया है। जब जब हरि माया ते दानो प्रकट भय हैं आए, तब तब धरी अवतार कृष्ण ने किन्हो असुर संहार, तो 24 रूप निज कहियत वर्णन करत विचार। यहाँ हरि लीला का पुष्टि मार्ग से घनिष्ठ संबंध भी देखा जा सकता है। पुष्टि मार्ग के सिद्धांत के अनुसार भगवत अनुग्रह से ही जीव की मुक्ति होती है। मर्यादा मार्ग में फंसकर जीव जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटता। जब तक प्रभु का अनुग्रह न हो, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग तथा योग मार्ग के विधि विधान में फंसा जीवन संसार चक्र में घूमता ही रहता है। इसी परिप्रेक्ष्य में महात्मा सूरदास ने सुर सरावली में यही कहा है, कर्म योग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो। इन सब साधनाओं का परित्याग करके जब जीव गोपी अथवा सखा भाव से भगवत लीला में सम्मिलित हो जाता है, तब उसकी मुक्ति हो जाती है। गोपियां युगल मूर्ति के आनंद विलास की सारी व्यवस्था करती है और कुंज के रंध्रों में उसका विहार देखकर तत्सुखी भाव से आनंद विभोर होती है। यही हरि लीला में सम्मिलित होना है। गोपियां इसी कारण भक्ति मार्ग की सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। पृष्ठ संख्या 32। यह आचरण ही सरावली का प्रतिपाद्य है। संसार का त्याग करके भगवत लीला का आत्मविभोर होकर गान करना उनका अंग बनना ही है। सरावली के अंत में सूरदास इसलिए कहते हैं, सरस सम्मतर सर लीला गावे, जुगल चरण चित लावे, गर्भावास बंदी खाने में सूर बहुरी नहीं आवे। इस प्रकार संपूर्ण सुर सरावली में विषय वस्तु के वर्गीकरण अनुसार अग्रलिखित वर्णन मिलते हैं। होली खेल के रूप में ब्रह्म का नित्य विहार, सृष्टि विस्तार, ब्रह्मा की उत्पत्ति, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना, होली खेल के रूप में देवार्षो संग्राम, 24 अवतार वराह, सनकादि यज्ञ पुरुष कपिल, दत्तात्रेय, नर नारायण, हरि, हंस, पृथु, ऋषभ, ग्रहग्रीव, मत्स्य, कुर्म, नृसिंह, नारद, मनु, धन्वंतरी, पशुराम, राम, व्यास, बुद्ध, कल्कि, अन्य अवतार, वामन, कृष्ण अवतार। श्री कृष्ण चरित्र। जन्म मथुरा से गोकुल गमन, कंस द्वारा बालिकावध आदि। ब्रज लीला। गोकुल जन्मोत्सव, पूतनावध, सकट भंजन, त्रिनावर्त वध, नामकरण संस्कार, बकासुर वध, बाल लीला, उखल बंधन, गोकुल से प्रस्थान, ब्रह्मा का मोह, विविध लीलाएं। मथुरा लीला। कंस का निमंत्रण, मल्लयुद्ध, कंसवध, उग्रसेन को राजगद्दी, गुरुकुल शिक्षा, मथुरा में आने पर ब्रज की स्मृति, उद्धव का ब्रजगमन, गोपी, उद्धव संवाद, उद्धव की वापसी, जरासंध द्वारा मथुरा पर चढ़ाई, मुचुकुंद की कथा, परकत दाह आदि। द्वारका लीला। श्री कृष्ण के अन्य विवाह, श्री कृष्ण का गांधर्स्थ जीवन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, अन्य वासुदेव कुरुक्षेत्र स्नान और ब्रजवासियों से भेंट, शिशुपाल वध, दुर्योधन का ध्रुत क्रीड़ा और द्रौपदी का अपमान, श्री कृष्ण का दूत कार्य, महाभारत युद्ध और भीष्म प्रतिज्ञा, द्वारका की अन्य लीलाएं, सुदामा लीला, राजा नृप की कथा, बलदेव का ब्रज आगमन, बलदेव की तीर्थ यात्रा, द्वारका की अन्य लीलाएं, भूमा पर कृपा, श्री कृष्ण द्वारा ब्रजवास की स्मृति, राधा कृष्ण का नित्य विहार, ब्रज की निकुंज लीला, मान लीला, विहार लीला, मान लीला, सुरतांत, बसंत खेल, होलिकोत्सव, वाद्य यंत्र वर्णन, होलिकोत्सव वर्णन, वन विहार, कृष्ण चरित की परंपरा, उपसंहार तथा श्रीनाथ जी का वरदान।